अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
जब भी हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो उसमें छिपी विविधता और एकता की अद्भुत झलक हमारे अंदर गर्व का भाव पैदा करती है। ये विविधता न केवल हमारे भूगोल में दिखती है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में भी झलकती है। ये भिन्नता हमें आपस में जोड़ने वाले एक महान सूत्र का हिस्सा है और वो सूत्र है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आपसी समझ। भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा इसी विविधता में एकता का बेहतरीन उदाहरण है। अब हम आष्ट लक्ष्मी के रूप में जाने जाने वाला ये क्षेत्र, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों का एक समूह है, ये क्षेत्र न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी अनूठी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातीय संस्कृतियाँ, लोक कला और पर्व इस क्षेत्र की विशिष्टता को दर्शाते हैं। हर जनजाति की अपनी भाषा, पहनावा और परंपराएं हैं जो उनकी सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखती हैं। रंग बिरंगे उत्सव जैसे नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, मणिपुर का संगाई महोत्सव और असम का बिहू उत्सव, ये न केवल आनंद और उल्लास का प्रतीक है बल्कि ये इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोए रखने के लिए एक बड़ा अहम संदेश देते हैं। पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरती केवल इसके पर्वों और परंपराओं तक ही सीमित नहीं है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक छटा अद्वितीय है। काजीरंगा का नेशनल पार्क, जिसे एक सींग वाले गैंडे का घर भी माना जाता है, और माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसकी प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा है। और ये क्षेत्र न केवल जैव विविधता से भरपूर है बल्कि ये पर्यटकों के लिए बड़ा ही अनुपम क्षेत्र माना जाता है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र हमें सिखाता है कि कैसे विविधता में एकता का भाव संजोया जा सकता है। यहाँ के लोग अपनी अलग अलग परंपराओं के बावजूद एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को गर्व के साथ सहेजते हैं। तो इस क्षेत्र की भव्यता से रूबरू करवाने के लिए हम आपसे हर रविवार मिलते हैं और पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर मैं आज फिर उपस्थित हूँ, कमल कुमार प्रजापति। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आने वाले 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाएंगे। ये दिन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और देश में हिस्सेदारी के लिहाज से बहुत अहम है। तो हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों का दिव्यांगजनों के लिए एक खास आयोजन हुआ, तो कार्यक्रम की शुरुआत हम इसी के साथ करते हैं। हाल ही में गुवाहाटी में पूर्वोत्तर का पहला पैरालंपिक खेल आयोजन हुआ। पूरे उत्तर पूर्व से दिव्यांग खिलाड़ियों ने एक साथ इस आयोजन में भाग लिया और इस टूर्नामेंट में न केवल उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया बल्कि पदक जीतकर सभी के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए ये संदेश भी दिया कि वे समाज में, खेल, संस्कृति और तमाम क्षेत्रों में आगे हैं। इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर खिलाड़ियों ने एक तरफ भाग लिया और बड़ी मात्रा में पदक जीते। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला राज्य असम बना। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश ने पैरा एथलेटिक्स में 26 पदक जीते, पैरा बैडमिंटन में 9 पदक, पैरा स्विमिंग में भी वहां 3 पदक आए और पैरा बॉक्सिंग में 1 पदक जीता गया। इसी तरह से तीसरे नंबर पर त्रिपुरा रहा। त्रिपुरा पैरालंपिक टीम ने कुल 23 पदक जीते जिनमें 9 स्वर्ण पदक शामिल है। तो इस सूचना के बाद अब हम पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य समाचार सुनते हैं निखिल से।
केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने बीते सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में 2 पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं 3,689 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएंगी। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये 2 परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिहाज से अहम हैं। ये दोनों परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में शुरू की जाएंगी। पहली परियोजना तातोवन पनबिजली परियोजना है। इसके लिए 186 मेगावाट की बिजली उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 1,750 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। दूसरी हेहो पनबिजली परियोजना है। इसमें 240 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1,939 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली से अरुणाचल प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा। इन परियोजनाओं से राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं को नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त कंपनियों के माध्यम से लागू किया जाएगा। तातो वन परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 77.37 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन दिया जाएगा, जिससे सड़कों, पुलों और संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण का कार्य होगा। इसके अलावा राज्य के इक्विटी हिस्से के लिए 120.43 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसी तरह हेओ परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 127.28 करोड़ रुपए का बजटीय सहयोग दिया जाएगा। इससे भी परियोजना से जुड़ी ढांचागत जरूरतों को पूरा किया जाएगा। साथ ही राज्य के इक्विटी हिस्से के लिए 130.43 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इन परियोजनाओं का ये भी लाभ होगा कि अरुणाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली मिल पाएगी और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1% अतिरिक्त बिजली का लाभ मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार और सामाजिक आर्थिक विकास भी होगा। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते 29 नवंबर को अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए एक प्रेस वार्ता की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय पहली बार अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन करेगा। उन्होंने उत्तर पूर्व के भारत के विकास में महत्व को समझाते हुए कहा, प्रधानमंत्री की ये सोच है कि उत्तर पूर्व भारत के विकास का इंजन बने। उन्होंने कहा, अष्टलक्ष्मी के 8 रूप समृद्धि, ऐश्वर्य, पवित्रता, धन, ज्ञान, कर्तव्य, कृषि और पशुपालन पूर्वोत्तर की खासियत को दर्शाते हैं। ये महोत्सव 6 से 8 दिसंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगा। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वार्ता में महोत्सव का शुभंकर पूर्वी पेश किया गया, जो उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक युवा महिला है। इसे महोत्सव के बाद भी उत्तर पूर्व का प्रतीक बनाने की योजना है। आइए इस महोत्सव में क्या कुछ विशेष होगा जानते हैं। महोत्सव में कई कारीगर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 250 से अधिक कारीगर और उद्यमी पूर्वोत्तर के हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पाद और 34 GI टैग वाले विशेष उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक राज्य का अलग अलग पवेलियन और एरी व मोगा सिल्क गैलरी भी मुख्य आकर्षण होंगे। कई तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खेल, कला और संस्कृति जैसे क्षेत्रों पर चर्चाएं होंगी। समृद्धि की ओर विकसित भारत की दिशा में पूर्वोत्तर की प्रगति नाम का मुख्य सत्र भी आयोजित किया जाएगा। एक निवेशक गोलमेज बैठक का भी आयोजन होने जा रहा है। ये बैठक व्यापार और निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए होगी। खरीदार विक्रेता बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। ये बैठकें हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि, रत्न आभूषण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी। इसके अलावा डिजाइन कॉन्क्लेव और फैशन शो भी होंगे। इनमें उत्तर पूर्व के हथकरघा और हस्तशिल्प की राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति दी जाएगी। अष्टलक्ष्मी ग्रामीण हाट भी देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत के पारंपरिक बाजारों का अनुभव देने वाला एक हाट, जहां 300 से अधिक कारीगर, किसान और जैविक उत्पादक होंगे, वे अपना उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी इस महोत्सव को विशेष बनाएंगी। महोत्सव में पारंपरिक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुतियां होंगी। 6 दिसंबर को अष्टलक्ष्मी सिंफनी और शिलोंग चैम्बर कॉयर की प्रस्तुति रखी गई है। 7 दिसंबर के दिन मिजोरम के पंगपरी की धुने, सिक्किम के सोफियम बैंड और प्रसाद बिदापा के फैशन शो का आगंतुक आनंद ले सकेंगे। 8 दिसंबर को मणिपुर के बसव संगीत, फेदर होट्स हाव कोई बैंड, ताई खमटी नृत्य और इमनला जामिर की गिटार प्रस्तुति का लुत्फ लिया जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों का ये विशेष महोत्सव होने जा रहा है। इस आयोजन का लक्ष्य पूर्वोत्तर के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव हर साल एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में आयोजित होगा जो उत्तर पूर्व की विविधता और समृद्धि को सम्मान देगा। ये महोत्सव आधुनिकता और परंपरा का मेल होगा जो भारत के विकास में उत्तर पूर्व की भूमिका को और मजबूत करेगा। नागालैंड के वोकहा जिले में शांतिपूर्ण प्राकृतिक दृश्य और जैव विविधता की संपदा के बावजूद एक गंभीर समस्या बढ़ रही है जिसे मानव हाथी संघर्ष कहा जाता है। वोकहा, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल मात्र 1628 वर्ग किलोमीटर है, यहां लगभग 160 से 180 हाथी रहते हैं। 2017 की जनगणना के अनुसार ये संख्या नागालैंड के कुल 446 हाथियों में से एक बड़ा हिस्सा है। वर्षों से वोकहा के लोग और यहाँ के जंगलों में रहने वाले हाथी एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान न मिलने के कारण ये संघर्ष आज भी दोनों के लिए चुनौती बना हुआ है। हमारे नागालैंड संवाददाता योहाना मरी ने बताया कि वोकहा के गांवों में ये संघर्ष काफी हानिकारक साबित हो रहा है। धान के खेतों से लेकर रबर के बागानों, गन्ने से लेकर सब्जियों तक किसानों की फसलें हाथियों के द्वारा खाई जा रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। चंका गांव के वीडीबी सचिव सेंद सुदी यंथन ने बताया कि हाथियों की समस्या हमेशा रही है, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में ये समस्या तेजी से बढ़ी है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद राज्य वन विभाग ने इस संकट का समाधान निकालने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत एक राज्य कार्ययोजना तैयार की गई है और मंजूरी के लिए भेजी गई है। ये योजना मानव और हाथियों दोनों के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें समुदाय का सहयोग मुख्य भूमिका निभाएगा। वोकहा में मानव हाथी संघर्ष ये दर्शाता है कि वन्य जीवों के साथ संतुलन बनाकर रहने की कितनी आवश्यकता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निखिल कुमार।
आज नागालैंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। आज नागालैंड दिवस के अवसर पर ही नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल की भी शुरुआत हुई और हमारे संवाददाता दिल्लीराम दुलाल कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल में पहुंचे और उन्होंने वहां से थोड़ी ही देर पहले हमें कुछ झलकियां भेजी। आइए सुनते हैं।
10 दिवसीय हॉर्नबिल उत्सव 2024 नागालैंड के किसामा गांव में शुरू हो गया है, जो कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाए जाने वाला यह उत्सव सभी नागा जनजातियों की पारंपरिक और समकालीन सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित करता है, एकता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देता है। वर्ष 2000 में शुरू हुए इस उत्सव ने नागालैंड के पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया है, जहां आगंतुक 17 पारंपरिक घरों के माध्यम से नागा संस्कृति की झलक प्राप्त करते हैं। इस वर्ष सिक्किम सहभागी राज्य के रूप में हिस्सा ले रहा है, जो अपने राज्य स्थापना के 50 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। सिक्किम का 144 सदस्य प्रतिनिधि मंडल, जिसमें अधिकारी, पत्रकार और स्वयं सहायता समूह के सदस्य शामिल है, उत्सव में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और विकास से जुड़े विचारों का अन्वेषण करना है। आकाशवाणी समाचार कोहिमा से दिलराम दुलाल।
दोस्तों, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में धूमधाम के साथ समाप्त हुआ और पिछले सप्ताह हमने आपको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व रहा है, वहां के फिल्म मेकर्स ने भाग लिया है, तो एक साक्षात्कार हमने आपको सुनवाया था। इस बार भी हम एक और साक्षात्कार आपके लिए लाए हैं। एक गारो फिल्म का प्रदर्शन इस बार पूर्वोत्तर पवेलियन में हुआ और वहां के जो युवा फिल्म मेकर हैं उनसे हमारे सहयोगी जी श्याम ने बात की और उनसे जानने की कोशिश की वो कौन सी फिल्म थी और उस फिल्म की कहानी क्या थी और पूर्वोत्तर राज्यों की जो इस तरह की फिल्में हैं उनको किस तरह से दर्शकों का प्रोत्साहन मिल रहा है, ये भी उनसे जाना। तो आइए ये विशेष बातचीत सुनते हैं।
नमस्कार, आज हम एक गारो फिल्म की बात करने जा रहे हैं। उसके बारे में जानने के लिए निश्चित रूप से हम उनके निर्देशक जो है, जो महिला है, एल्बा सिचा, सी एच संगमा और दीपंकर दास जी हमारे साथ हैं, अपनी फिल्म के बारे में और उसकी कहानी के बारे में हमें बताएंगे और इफ्फी में जो उसका प्रवेश हुआ है और जो उसकी प्रतिक्रिया मिल रही है उसके बारे में हमें बताएंगे। तो एलवसुचा सी एच संगमा जी, आप अपने फिल्म के बारे में हिंदी में कुछ बता सकती हैं?
हाँ, जरूर बता सकते हैं। ये फिल्म जो है मेघालय में शूट किया है, वेस्ट कारिल्स में। ये फिल्म मैट्रिनिनल सोसाइटी में बनाया हुआ है, जो फैमिली के ऊपर है, जो लड़का लड़की के घर में आता है। ये फिल्म जो है वो फैमिली ड्रामा है। जो वाइफ है वो अर्न करने के लिए बाहर जाता है, तो वो हस्बैंड घर पे रहता है, खेती करता है, फिर वो जो सन है। ये तीनों का रिलेशनशिप है। जो फादर है उधर पे क्या फील हो रहा है घर पे रह के, वो उसके बारे में ज्यादा फोकस किया हुआ है, उसका जो क्या फील करे अंदर से। एंड तो वो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो इतना भी कुछ खास नहीं है, वो लोग कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता है। ओनली द कम्युनिकेशन वे है वो बच्चा के थ्रू होता है, तो वही है।
इस फिल्म के बारे में आपने बताया है कि जो पति और पत्नी के बीच में जो है वो रिश्तों में थोड़ी सी इतनी गर्माहट नहीं है, कमी है। दीपंकर जी आप बताइए कुछ।
वही है इसने जो बताया एल्वा ने, कि ये बेसिकली हम मेनलैंड इंडिया से थोड़ा हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का सोसाइटी थोड़ा अलग है। मेनलैंड में क्या होता है, लड़की शादी होके लड़का का घर जाता है, लेकिन मेघालय में ये प्रैक्टिस है कि लड़का शादी होके लड़की के घर जाना पड़ता है। तो ये फिल्म का बारे में वही है, वो लड़का शादी होने के बाद वो कैसा फैमिली में फेस करता है, वो सोसाइटी में कैसा फील करता है, वही फिल्म में दिखाया है,
इस फिल्म में दर्शाया गया है। फिल्म का नाम आप बताइए क्या है?
शांची सोवा।
इसका हिंदी में अर्थ बताइए कृपया।
आशा,
आकांक्षाएं, आशाएं, मतलब ऐसा होता है जैसा भी आपने बताया कि मेघालय में जो है सामान्य रूप से प्रचलित है कि लड़की शादी होने के बाद में लड़के के घर जाती है, लेकिन उस समाज में जिस समाज से आप आते हैं और जिस समाज की कहानी आप कह रहे हैं उसमें जो है लड़का लड़की के घर शादी होने के बाद जाता है, यही कहना चाहते हैं। और ये कहानी उसके बीच में जो अंतर द्वंद पैदा होते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ भी तकलीफें होती हैं, तो उससे सॉल्व करने की कोशिश करती है
जो प्रॉब्लम होता है। हाँ, जो फिल्म में वो दिखाया गया है उसमें कुछ भी वो मतलब ऐसे ही वो जो हस्बैंड है वो ऐसे ही घर पे बैठ के रहता है, कुछ भी वो सॉल्व करने के लिए कोशिश नहीं करता है, मतलब ऐसे ही चुपचाप से रहता है। अगर वो कोशिश भी करते है वो ऐसे ही मन में खुद के अंदर में उसे ही घुस के रहता है। तो वही
कहानी आपने पर्दे पर कही है और बड़े अच्छे ढंग से कही है, कैसा मतलब प्रतिक्रिया कैसी है, मतलब रिस्पॉन्स कैसा है इसका?
अभी होगा स्क्रीनिंग, तो अभी क्या रिस्पॉन्स होगा वो तो
इफ्फी में क्या होगा। इसके पहले आपने इसे कहीं और दिखलाया है?
ओ हाँ, मिफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया।
मिफ में आपने दिखलाया था इसको, और उसमें कैसी प्रतिक्रिया थी, कैसे रिस्पांस था?
उसमें अच्छा ही रिस्पांस था, मतलब क्योंकि मतलब ये मिफ में बेस्ट फिल्म स्टूडेंट अवार्ड भी मिल चुका है।
बेस्ट स्टूडेंट, तो आप कहाँ के स्टूडेंट हैं आप?
हम लोग अभी रिसेंटली पास आउट हुआ है डॉक्टर भूपेन हजारिका रीजनल गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट बेसिकली इन आसाम।
क्या बात है, तो आप दोनों यंग डायरेक्टर्स हैं और आपकी फिल्म आगे भी बहुत अच्छा करे और भी आप बहुत सारी फिल्में बनाएं और दर्शक उसे देख पाए और अपने समाज की अपनी कहानियां जो है पूरी दुनिया भर में फैलाएं। आपको बहुत बहुत बधाइयां और धन्यवाद।
श्रोताओं, मेघालय महिला आयोग ने एक खास अभियान की शुरुआत की है। बीते सोमवार को महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों को लेकर एक 16 दिवस का अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का मकसद है कि लैंगिक आधार पर जो हिंसा होती है, भेदभाव होता है और जो मामले मेघालय में बढ़ने लगे हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो आइए विस्तार से अपने संवाददाता से इस विशेष अभियान के बारे में एक रिपोर्ट सुनते हैं।
मेघालय महिला आयोग ने सोमवार को महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय अभियान शुरू किया। ये अभियान 10 दिसंबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य लैंगिक आधार पर हिंसा में हो रही वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना और समाज को इसके खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। राजधानी शिलांग में इस अभियान की शुरुआत के दौरान नोंग थाई माई से डॉन बॉस्को स्क्वायर लैतुम खरा तक एक रोड शो आयोजित किया गया। आयोग की अध्यक्ष आयामोनलोंग सईम ने संवाददाताओं से कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, कार्रवाई के लिए प्रेरित करना और महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ हिंसा रोकने और समाप्त करने के लिए नीतियों की वकालत करना है। उन्होंने कहा कि हिंसा हर जगह है और ये दिखाता है कि न केवल महिलाएं बल्कि बच्चे, युवा और वयस्क पुरुष भी हिंसा के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि जो हिंसा से पीड़ित है वे आगे आएं और चुप न रहें, क्योंकि ये केवल उनका संघर्ष नहीं है। हाल ही में मेघालय में घरेलू हिंसा का एक भयानक मामला सामने आया, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को जला दिया। इस घटना ने पूरे राज्य में लोगों को झकझोर दिया। महिला आयोग की अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की है कि ये अभियान जनता को उनकी आवाज उठाने के अधिकार और ये समझने के लिए शिक्षित करेगा कि हिंसा कहाँ हो रही है और कैसे इसे रोकने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। हाल के आंकड़े मेघालय में स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। 2023 में भारतीय दंड संहिता IPC के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के 855 मामले और विशेष तथा स्थानीय कानूनों के तहत 339 मामले दर्ज किए गए। हालांकि रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या बढ़ने के बावजूद सजा की दर चिंताजनक रूप से कम बनी हुई है। 2023 में केवल 24 दुष्कर्म मामलों में सजा हुई, जबकि 18 मामलों में आरोप मुक्ति हुई। IPC के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जिन 44 मामलों का ट्रायल हुआ, उनमें केवल 31 में ही सजा हुई। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को देखते हुए ये अभियान न्याय की मांग करने, कानूनी सुधारों को आगे बढ़ाने और मेघालय में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच का काम करेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए शिलांग से लेम्प्रांग नांगस्पुंग की रिपोर्ट के साथ विशाल शर्मा।
दोस्तों, मेघालय के बाद अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के पापू हिल्स में बचाए गए एक स्मॉल इंडियन सीविट को सफलतापूर्वक पापे केसांग जिले के पाके टाइगर रिजर्व में एक रिलीज साइट पर रखा गया है और उसे स्थानांतरित किया गया है। बचाव के समय इस पर इस सीविट की उम्र लगभग 2 महीने की थी और इसे टाइगर रिजर्व के भालू पुनर्वास केंद्र में पुनर्वास के लिए रखा गया है। लगातार हम अरुणाचल प्रदेश से जीवों के संरक्षण की खबरें सुनते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश प्रकृति के संरक्षण में बहुत आगे है। तो आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से भी जानते हैं कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जीवों का संरक्षण और पुनर्वास किया जा रहा है।
स्मॉल इंडियन सीविट विविरिडाय परिवार का सदस्य है, जो एक निशाचरी और छोटा मांसाहारी जीव है। स्मॉल इंडियन सीविट बहुत ही अनुकूलनशील है और विभिन्न परिस्थितियों में, यहाँ तक कि मानव बस्तियों के पास भी रह सकता है। यह दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में कई प्रकार के आवासों में पाया जाता है। यह प्रजाति भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। पाके टाइगर रिजर्व के भालू पुनर्वास केंद्र के प्रबंधक और प्रमुख डॉक्टर पंजीत बसुमतारी ने बताया कि बचाए गए सीविट को शुरुआत में ईटानगर बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया था, जिसके बाद जून में इसे पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित किया गया। उन्होंने कहा कि जब सीविट को यहाँ लाया गया तो यह अत्यधिक तनाव में था और उसकी सेहत काफी खराब थी। उन्होंने बताया कि गहन देखभाल और उपचार के बाद उसकी सेहत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। डॉक्टर पंजीत ने बताया कि सीविट अच्छी तरह से बढ़ रहा है और अनुकूलन के लिए इसे रिलीज साइट पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
तो अभी जो हम लोग स्मॉल इंडियन सीविट, इसको हम लोग रेस्क्यू किया था, ही वाज इन सीवियर स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम लोग जितना सके हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद केयर, जितना केयर करना है 24/7 केयर, उसको हम लोग केयर किया है। तो फाइनली ये जो रेस्क्यू हुआ स्मॉल इंडियन सीविट अरुणाचल से, उसको फाइनली हम लोग सक्सेसफुली हैंडरेज कर सका। स्टार्टिंग व्हेन ही केम टू अस, he was very tiny actually, he was in milk infant stage में था, दूध पीने वाला stage में था। तो उसको धीरे धीरे हम लोग दूध पिला के then again introduce the soup, वो जो meat का soup है उसको introduce किया धीरे धीरे, then some varieties of fruits धीरे धीरे introduce किया है। तो slowly he grown up and last 4-5 months he learned many things, different species of food habits. Now we have relocated this individual to the forest to release back to the wild. He will be there inside forest for 2 to 3 months for acclimatization, and where he can learn how to hunt the rodents, you know, especially the small vertebrates like rats, mice, small birds, and some kinds of small pets and different kinds of fruits. So this kind of, you know, skill he has to develop inside the forest and eventually will release in the same place.
Pakke Tiger Reserve ke Divisional Forest Officer Satyaprakash Singh ne Arunachal Pradesh Van Vibhag aur Bhalu Punarvas Kendra team ke prayason ki sarahana ki. उन्होंने कहा कि इस जीप को पाके टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थानांतरित करना इसे जंगल में पुनः एकीकृत और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में लौटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. पूर्वोत्तर डायरी के लिए राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर.
अब हम अरुणाचल प्रदेश से पूर्वोत्तर के एक और खूबसूरत राज्य चलते हैं, मिजोरम. दोस्तों, मिजोरम में हाल ही में एक बहुत खूबसूरत आयोजन देखने को मिला. 4 दिन तक चलने वाले फ्लोरिस्ट मेले का आयोजन यहाँ किया गया था. इस मेले का मकसद है कि जो मिजोरम के फूल विक्रेता हैं, उनको एक मंच पर लाया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उनका सशक्तिकरण हो, जिससे वो फूल के व्यवसाय के मामले में अपनी आय के अवसरों को तलाश सकें. तो ये फ्लोरिस्ट फेस्टिवल किस तरह का था, आइए अपने संवाददाता से विस्तार से जानते हैं.
मिजोरम में हाल ही में आइजोल में 4 दिवसीय फ्लोरिस्ट मेले का आयोजन किया गया. इस मेले का उद्देश्य सैकड़ों फूल विक्रेताओं को प्रोत्साहित और सशक्त करना था, जिन्होंने इस व्यवसाय को अपनी आय और जीवन यापन का मुख्य साधन बनाया है. मिजोरम में समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो फ्लोरिस्ट के पेशे को आय अर्जित करने के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं. आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मिजोरम फ्लोरिस्ट एसोसिएशन की महासचिव हमगाई हजमेवली रियाल्टे ने बताया कि राज्य में लगभग 1000 फूल विक्रेता है. उन्होंने कहा कि फ्लोरिस्ट का पेशा अब आय का एक महत्वपूर्ण जरिया बनता जा रहा है. रियाल्टे ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य उन लोगों को प्रोत्साहित और सशक्त करना है जो फूलों की खेती को अपनी आजीविका के रूप में अपना रहे हैं. मेले में घर के पौधों और फूलों की बिक्री के साथ साथ कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं. इनमें मास अरेंजमेंट, आर्टिस्टिक, इकेबाना, बारहमासी, मौसमी और क्वीन ऑफ द शो जैसी श्रेणियां शामिल थीं. इन प्रतियोगिताओं में लगभग 100 प्रविष्टियां दर्ज हुई. फ्लोरिस्ट मेले में एक आगंतुक ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि वे मेले में आकर बहुत उत्साहित हैं. मिजोरम फ्लोरिस्ट एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई थी. तब से ये एसोसिएशन राज्य सरकार के साथ मिलकर सरकारी परिसरों और बगीचों की देखभाल करती आ रही है. पिछले 20 वर्षों से ये एसोसिएशन मिजोरम के एकमात्र हवाई अड्डे लेंगपोई एयरपोर्ट की देखरेख भी कर रही है. पूर्वोत्तर डायरी के लिए आइजोल से आयरिन की रिपोर्ट के साथ मैं वैष्णवी.
श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं, कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव भी लिख सकते हैं. हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044. श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं. अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में. मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी.
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।